ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहां। कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहां। इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां। जज्बातों की बातों में ना आना, जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। आंसू मोती खर्चो ना, खामियां खास समझो ना। इतनी चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। बंदिल बाहों को है खुलना सिखाना जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं।
ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो ऐ दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। खुद के होने की पहली सुलझाने जो ऐ दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। कदमों में जमा जो थक चैन की नींद आती वहां। इतनी सुहानी बना हो ना पुरानी तेरी दास्तां। हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता। आंसू मोती खर्चे ना, खामियां खास समझो ना। इतनी सुहानी बना, सुन लो ना गलतियों का है कहना। नादानियों में तजुर्बा बैठा, जज्बातों की बातों में न आना। जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। आंसू मोती खर्चो न, चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना जो ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। बंद दिल बाहों को है खुलना सिखाना जो ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, हो ना पुरानी तेरी दासता इतनी सुहानी बना। काम लंबा है, बड़ा है, ये एक दिन में नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की, प्रैक्टिस इज द की। कितना भी सुन लिया एक्साइट हो गए, पर अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो जीरो। ये एक्साइटमेंट, ये बाह्य मुक्ता थोड़ी देर चलेगी बस। ज्ञान का उद्देश्य अंतर्मुखी बनाना, अगर वो नहीं हो रहा है तो गलती है। ज्ञान का उद्देश्य है टू बी सेंटर्ड, अगर ध्यान बाहर जा रहा है, व्यक्तियों की तरफ जा रहा है, भटक रहा है, प्रभावित हो रहा है चीजें देखकर या सुनकर, तो पाखंड मात्र है। इक्कीस दिन की इस साधना का आज का अंतिम दिन, जो जो विधियां हमने सुनी जानी, अब उसको स्वरूप में लाना है, उसमें और नवीनता लानी है। जो बताया गया बहुत ही बेसिक था, उसमें रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना है, डेप्थ में जाना है। जो ये करेंगे वही आगे जाएंगे, और जो केवल बहुत अच्छा था करते रहेंगे, वो वही रहेंगे जहां थे। सतत साधना, प्रतिपल, सजगता, साधना का लक्ष्य। यदि अतीत में मन भटक रहा है या भविष्य में, और इस पल में नहीं है, तो ये भी क्या है? टाइम वेस्ट, बफेलो जोन। ये जो भी जोन्स बताए हैं, धीरे धीरे इनकी परिभाषाएं सूक्ष्म होती जाएगी। चंदा सा पक्का सा रास्ता बनाना, ऐ दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। इट्स नॉट अ वन डे जॉब। ये टेक्निक्स कोई एक या दो दिन की नहीं है, ये जीवन बन जाए। जैसे प्राणी की यात्रा में कहा था कि वो जीवन बन जाए, बहुत अच्छा था कर दिया और वहीं छोड़ दिया, और उसको जीवन नहीं बनाया, तो वो केवल एक मेमोरी रह जाएगी बस, मेमोरियल, और कुछ भी नहीं। वो अभी इस समय प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो आज के इस अंतिम पड़ाव में हम कुछ जो बातें छूट गई है वो लेंगे। 16 स्टडी टिप्स। हम स्टूडेंट हैं, ये स्कूल है, स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि रैंक अच्छा है, ताकि फेल ना हो। स्टूडेंट अर्थात बुक, पेन, पेपर, पेंसिल, बैग, सब कुछ रहना चाहिए, नोट्स, रिवीजन, घड़ी, टाइमर, टेक्निक्स, चिट पेपर्स, फ्लैश कार्ड्स, स्टडी टेबल, सब कुछ। अगर नहीं है तो लाओ। तो ऐसी हम 16 टिप्स देखेंगे स्टडी की। ये टिप्स केवल इस आध्यात्मिक स्टडी में ही काम नहीं आएगी, इस संसार का जो भी अध्ययन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुछ भी, स्टैटिस्टिक्स, कहीं पर भी कुछ भी जो अध्ययन कर रहे हैं, लॉ की स्टडी हो या कोई भी स्टडी हो, उन सभी स्टडीज में अगर ये सारी टिप्स अप्लाई की जाए तो बहुत फायदा होगा, आगे जाएंगे। और अभी तक जितनी भी टेक्निक्स यहां पे बताई गई है 21 दिनों में, उसमें से यदि पूछा जाए एक टेक्निक बताओ जो सबसे पावरफुल है, तो वो कौन सी होगी? पावरफुल तो सभी थी, पर एक जो सबसे पावरफुल, अगर हमें पूछा जाए कि एक टेक्निक बताओ और जो सभी स्कूलों में कंपलसरी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, वो है स्पीड रीडिंग। हम बचपन में जब साइकिल सीखते हैं तो धीरे धीरे चलाते हैं और फिर बाद में स्पीड पकड़ते हैं। बचपन में जब लिखना सीखते हैं तो धीरे धीरे लिखते हैं फिर स्पीड पकड़ते हैं। बचपन में खाना धीरे धीरे खाते हैं फिर फास्ट खाने लगते हैं। बचपन में जो भी चीजें करते हैं वो स्लोली स्लोली करते हैं और फिर उसमें स्पीड आ जाती है। पर ये एकमात्र ऐसा काम है कि हम धीरे धीरे पढ़ने की जो आदत पड़ी है वही पकड़ के है, क्योंकि हमारे मन में ये एकदम पक्की धारणा है कि यदि मैं फास्ट पढ़ूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ना है। वर्ड पर मिनट, ये अगली भट्टी में हम स्पीड निकालेंगे हर एक की, स्पीड क्या है, वर्ड्स, कितने वर्ड्स एक मिनट में पढ़े जाते हैं, करंट रीडिंग स्पीड कितनी है और कितने तक हमको उसको लेके जाना है। ये जब तक स्पीड रीडिंग नहीं करेंगे तब तक इतना बड़ा वास्ट पोर्शन आप कैसे कवर करोगे, जबकि हमारा मन एक बहुत बड़ा मेंटल हर्डल बैरियर है, एक कि मुझे समझ में नहीं आता है, ये इसकी वजह से, क्योंकि स्लो पढ़ूंगा तो समझ में आएगा, फास्ट पढ़ते तो समझ में नहीं आता है। ये तो बचपन से ही, 5th स्टैंडर्ड से ही हर स्कूल में कंपलसरी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, सभी स्कूलों में स्पीड रीडिंग। इसकी ढेर सारी टेक्निक्स है, वर्ड कैप्चरिंग टेक्निक हमने देखी, रिवर्स रीडिंग एक टेक्निक देखी, फिंगर्स वाली टेक्निक देखी, ये तो कुछ बताइए, इसके अलावा भी बहुत कुछ है उसमें कि जिसमें फास्ट भी हो जाए, अंडरस्टैंड भी हो जाए, क्योंकि एक बार पोर्शन कंप्लीट होने के बाद एक संतुष्टता रहती है कि मेरा एक रीडिंग तो हो गई। नॉन डोमिनेंट हैंड से सारी प्रैक्टिसेस करनी है, लिखना सब कुछ, सारे कार्य करना नॉन डोमिनेंट हैंड, क्योंकि हम एक समय पर दो काम दे रहे हैं, एक राइट हैंड को, एक लेफ्ट हैंड को। राइट हैंड कुछ और लिख रहा है, लेफ्ट हैंड कुछ और लिख रहा है, चाहे लिखना हो या कुछ भी हो, उससे ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है और फिर लर्निंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है, क्योंकि सारा खेल कितना फास्ट हम ग्राप्स करते हैं। एक है मुरली ली, पढ़ी रहे सुबह से शाम तक, पढ़े ही जा रहे हैं। चलो संसार की कोई व्यर्थ चीजें तो नहीं कर रहे हैं, पर ये करते हुए कहां कहां मन घूम के आ रहा है, और उसके बाद में भी पूरा जब हो गया 5-6 घंटे बाद, अगर कोई पूछे कुछ बताओ, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा था, और आत्मा समझ के बाप को याद करो, बस ये इतना ही पता है, पर उसका करना क्या है वो कुछ भी टच नहीं हुआ। तो आज हम ऐसी, तो हम बता रहे थे स्पीड रीडिंग, स्पीड से पढ़ने की कोशिश करनी है, उसमें मुझे समझेगा कि नहीं ये ब्लॉक है इसको हटा दो, समझेगा, सब समझेगा धीरे 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 धीरे, जैसी जैसी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम ऐसी अंतिम दिन में 16 टिप्स स्टडीज की लेंगे। सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल,
ए फॉर एक्टिव रिकॉल,
कुछ भी पढ़ा या देखा या सुना उसको तुरंत रिकॉल करने की कोशिश। अभी पूरी मुरली बैठ के सुन ली एक घंटा, अभी नाश्ता कर रहे तो याद करने की कोशिश करो क्या क्या था, थोड़ा जोर डालना है। मन कहता है नहीं ये काम मुझे मत दो। हमारा जो रिलैक्सेशन का पीरियड है वो है मोबाइल खोलना, व्हाट्सएप देखना, ईमेल देखना, कोई मैसेज देखना, कॉल करना, ये हम रिलैक्सेशन। वो करने के बजाय स्टार्ट ब्रेन जिम, ये रिलैक्सेशन है। दिस इज द बेस्ट रिलैक्सेशन। 10 times ऐसे करो, 10 times ऐसे करो, दैट इज अ रिलैक्सेशन। अलग अलग ब्रेन जिम्स है, वो करते रहो करते रहो करते रहो, नई नई एक्टिविटीज करते रहो। तो एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल अर्थात अभी जैसे कोई भी क्लास भी सुन रहे हो, क्लास सुनने के तुरंत बाद एक रिकॉल करना है कि मुझे क्या क्या याद है, मुझे देखूं तो सही कहां तक याद रहता है। और कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ भी याद नहीं है, तो इसमें दुखी भी नहीं होना है। एक्सेप्ट योर ऑर्डिनरीनेस। बोकाजू नाम का जेन मास्टर था, विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ा रहा था चाइनीज क्लासिक्स पर, धूप थी, देखा क्लास के सभी विद्यार्थी सो रहे, बोकाजू रुक गया। बोकाजू ने कहा आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि धूप इतनी है, पसीना है और नींद तो आनी ही चाहिए, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं। किताब बंद करता है, अपना चश्मा नीचे रखता है और सो जाता है, और थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगता है। जो लोग सोए थे वो भी उठ जाते, सब जागृत कि मास्टर जी अब कब जागेंगे। ऑर्डिनरीनेस उसी में माए, अब है तो है, अब क्या करे। उसमें मुझे दिखावा नहीं करना है कि मुझे तो मैं जागा हूं और इतनी भयंकर नींद आ रही है अंदर से। सिंपल। वही बोकाजू एक बार एक जगह प्रवचन दे रहा था, वहां किसी और सेक्ट का, किसी और जाति का एक व्यक्ति आके बैठता है। वो कहता है तुम क्या कर सकते हो, मेरे जो गुरु है ना वो इतने चमत्कार कर सकते, तुम कोई चमत्कार करते हो क्या। तो पूछता क्या चमत्कार करते तुम्हारे गुरु। वो कहते हैं हमारे गुरु जो है कागज पर इस तरफ लिखते हैं और नदी के उस पार एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो वहां पर अंकित हो जाता है, या फिर वहां पर जो लिखा है वो यहां से पढ़ के बता देते बिना देखे। तुम ऐसा कोई चमत्कार करते हो। हम बोकाजू कहते चमत्कार तो मैं भी करता हूं। वो पूछते क्या चमत्कार करते हो। वो कहते जब भूख लगती है तब खाता हूं, प्यास लगती हो तो पीता हूं, और नींद आती है तो सो जाता हूं, यही मेरा चमत्कार है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की, कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाऊं, एकदम प्रभावित कर दूं सबको। मेरे कुछ क्या, मेरी तो बात ही कुछ और है, मेरा जलवा ही कुछ और है। पता तो चले मैं भी कुछ हूं, भयंकर टैलेंट भरा पड़ा है, कैसे पता करूं, लोगों को पता चले। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ऑडियंस चाहिए मुझे। गायक होते हैं ना वो शुरुआत में गीत नहीं गाते किसी फंक्शन, कहते हमारा बीच में रखना, बीच में, तब तक फुल ऑडियंस हो जाए तब। द ग्रेटेस्ट मिरेकल इज टू बी ऑर्डिनरी। क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या पुरुषार्थ करते हो, सुबह अमृत वेला उठते हैं, क्लास करते कराते हैं, या फिर वो करते हैं, फिर ड्यूटी पे जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, नुआ शाम का योग कई बार मिस होता है करते हैं, रात आती है सो जाते हैं, ये है पुरुषार्थ। नहीं नहीं विशेष बताओ क्या करते हो, विशेष यही है। यही है और क्या करे। हर कार्य अलर्टनेस के साथ करना, यही पुरुषार्थ है, होश में करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना। पर जो सिंपल से सिंपल कार्य है, सबसे बड़ा मिराकल कौन सा है, जो भूख लगी तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और नींद आए तो सो जाना, और ना भूख लगे तो फिर 2-3 दिन भी निकल जाए भले। ऑर्डिनरीनेस, एक्टिव रिकॉल। तो सबसे पहला क्या है? एक्टिव रिकॉल। कुछ भी सुना, जो सुना है उसको तुरंत याद करने की कोशिश करो क्या सुना, जो पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करो क्या पढ़ा है, जो देखा है, कुछ भी हो सकता है, वो फिल्म हो सकती है, एनीथिंग, जो आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, कहीं रास्ते से जाके आए कोई नए जगह पर, याद करने की कोशिश करो कौन कौन से साइन पोस्ट, क्या क्या चीजें बीच में आई। ध्यान से मन को थोड़ा काम देना। लव डिस्कम्फर्ट, किसके प्रेम में पड़ना है, डिस्कम्फर्ट, असुविधा, वो असुविधा में ही आगे बढ़ सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वो खिलाड़ी खेलता है क्रिकेट के मैदान में या फिर फुटबॉल की मैच में, कितना लोग, इतनी सारी ऑडियंस उसको कितना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, चिल्लाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, किसी का मोबाइल बज रहा है, वो कहता है कि चुप शांत मुझे एकाग्र होने दो, तुम लोग ये सब बाद में चिल्लाना, मुझे डिस्टर्ब होता है, ऐसा चिल्लाओ मत, भले मैंने बहुत अच्छे रन्स बनाए होंगे पर अभी भरोसा थोड़ी ना है, तुम ऐसा चिल्लाओगे तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन भंग हो जाएगा। कुछ बोलता है वो? कुछ नहीं, उसका ध्यान सारा अपनी बैटिंग या अपने फुटबॉल पर है, बस वो ऑडियंस से कोई मतलब ही नहीं है उसको। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो एक्टिव रिकॉल करना है तुरंत, सुना, पढ़ा, कुछ ये किया, एक ही बार पढ़ लो, 10-10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग कहते तुम कितनी बार मुरली पढ़ते हो, कितनी बार क्यों, एक ही बार पढ़ते हैं, पर वो एक बार पढ़ना तुम्हारे 100 के बराबर है। ऐसे छप जाए, पिक्चर बन जाए। आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारा दुगोले का चित्र दीवार जैसा होना चाहिए, भले 8-10 लोग लगे उसको उठाने के लिए, सुबह की साकार मुरली। बाबा को कैसे बड़े बड़े विजुअलाइजेशंस पसंद है, हाँ एकदम, ऐसे बड़े बड़े छोटे मोटे से पसंद नहीं है उसको, बड़ा बड़ा पसंद है उसको सब, भले 8-10 लोग लग जाए उठाने के लिए, दीवार जैसा होना चाहिए। मतलब ही इज टॉकिंग ऑफ समथिंग इम्पॉसिबल, ये कब बता रहे हैं, 1960s में, विजन देखो उसकी। दूसरा, बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनानी है। जब भी कुछ चीजें याद रखनी हो, 7 चीजें 8 चीजें 10 चीजें, बिल्डिंग बना दो, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, जैसे हम ये एक मुरली की ही बिल्डिंग बना दे, शांति स्तंभ सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर में हिस्ट्री हॉल आ गया, थर्ड फ्लोर में बाबा का कमरा, फोर्थ फ्लोर में कुटिया आ गई, फिफ्थ फ्लोर में आंगन आ गया, सिक्स फ्लोर में रिसेप्शन आ गया, सेवन फ्लोर पे ओम शांति भवन आ गया। अब एक एक फ्लोर पे एक एक पॉइंट डालते जाओ, फिर जाओ नीचे से पैदल, अच्छा कौन सा फ्लोर है, फिर एंट्री करो, अच्छा शांति स्तंभ वाला फ्लोर, अच्छा यहाँ ये पॉइंट रखी थी, फिर दूसरे फ्लोर पर जाओ, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, फिर फिफ्थ फ्लोर। ये एक उदाहरण है, वैसे कुछ भी अगर 7 चीजें याद रखनी है, 10 चीजें याद रखनी है, 20, कुछ भी, एक फ्लोर बना दो, उसमें एक एक फ्लोर में एक एक डाल दो। और आप अगर किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको तो पता ही है यहाँ कौन रहता है, यहाँ राम रहता है, श्याम रहता है, चंगू मंगू जो भी रहते हैं, उसके साथ वो पॉइंट जोड़ दो फिर कि ये उसका घर है, ठीक है। ऐसे 7 फ्लोर बिल्डिंग मेथड, ये भी एक टेक्निक है मेमोरी की, कि आप बिल्डिंग बनाओ एक, या फिर आपको कॉन्ट्रास्ट करने हैं, ए विंग बी विंग 2 बिल्डिंग बना दो, उसमें कुछ चीजें डाल दो, बी विंग में कुछ चीजें डाल दो, ए के ऊपर लिख दो एप्पल, बी के ऊपर एक बेल, तो 2 अलग अलग बिल्डिंग हो गई। ये भी एक टेक्निक है, क्या कर देना, बिल्डिंग बनानी है और उसमें एक एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे फ्लोर बनाते जाओ, एक एक फ्लोर पर एक एक पॉइंट डालते। सेकंड मेथड, सेकंड टिप स्टडी के लिए, आपको कुछ भी 7 लॉज याद रखने हैं, 7 नर्व्स याद रखनी है, 7 प्रकार की बीमारियां याद रखनी है, 8 प्रकार की बीमारियां याद रखनी है,
या आठ गांव याद रखने हैं, या फिर आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं तो यहां से वहां तक बीच में कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं, एक स्टेशन को इधर डालो उधर डालो, एनीथिंग। यहां तो हम मुरली की बात कर रहे हैं पर बता रहे हैं ये भी किया जा सकता है। जैसे योग की 7 पॉइंट्स है तो एक पॉइंट को नीचे डालो ऊपर डालो, ऐसे एक योग की बिल्डिंग बना दो, ज्ञान की बिल्डिंग बना दो, सेवाओं की बिल्डिंग, सेवा की 7 पॉइंट्स क्या क्या करना है। या कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग में सभी बैठे, मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकलते हैं ना, उसका सार 1 2 3 4 5 6, इनको ये काम उसको वो काम उसको वो काम उसको वो काम, उस भाई के उस काम के उस काम और उसको जोड़ दो, उसका एसोसिएशन बना देना है। तो दिस इज सेकंड मेथड। थर्ड मेथड कलर कोडिंग, ज्यादा से ज्यादा कलर यूज करने का प्रयत्न करना है। जो भी चित्र बनाओगे, स्केच बनाओगे, कुछ भी बनाओगे उसमें अलग अलग कलर्स, इसकी मेमोरीज होती है। हम सिंपल अगर ये रहा तो ये भूल जाता है, पर यही अगर इसको कलर्ड कर दिया जाए, उसमें मार्क कर दिया जाए जो कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान सबसे पहले उस तरफ जाता है, कलर की तरफ, कलर कोडिंग। उसके बाद में अगला डी, डू एंड रीडू, मतलब रेपिटेशन, डू एंड रीडू, बार 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 करना है उसको। कोई भी चीज शुरुआत में कठिन होती है पर बार बार करते रहो तो हो जाता है। आई प्रैक्टिस, करते रहो, कई बार करते रहो उसको, जब तक कि वो आसान ना हो जाए। जो मेडल लेते हैं लोग, उस मेडल के पीछे कितनी उनकी मेहनत छिपी होती है, पूरे साल भर, कितने सारे वर्षों की मेहनत होती है, दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके उनको कुछ प्राप्त होता है। तो लौकिक में ये है तो अलौकिक में तो क्या होगा। यहां पर भी दिन रात की मेहनत चाहिए, रिपीट करते रहना है वही चीज को, कुछ नया करने की जरूरत नहीं, जो सिखाए अभी टेक्निक्स उसको ही रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, उसमें ही मास्टर बनना है। जो उस दिन भी कहा, थोड़ा सा भी पढ़ ली, एक्यूरेसी मोर इंपॉर्टेंट है रादर देन, हाँ जो कहते हो पूरा समझ लिया, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, पूरी मुरली नहीं पढ़ पाए पर इतना तो पढ़ लिया है। तलवार किसकी है, ज्ञान की, उसमें क्या चाहिए, योग। तो खाली ज्ञान से काम नहीं होगा, योग भी चाहिए। योग में क्या, चिंतन 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 को आगे बढ़ाते जाना है, प्रश्न पूछते जाना है अपने आप से, योग अर्थात क्या, योग किसे मैं कहता हूं, योग और याद में क्या अंतर है, वगैरह वगैरह। तो डू एंड रीडू, बार 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 रिपीट करते जाओ उसको। उसके बाद में ई, अभी यहां पे थोड़ा काम देना है अपने आप को, इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। रोज हिंदी में मुरली पढ़ते वो थोड़ा सा इंग्लिश में मुरली पढ़े, इंग्लिश में नए शब्द मिलेंगे, नए शब्दों से दोस्ती करो, न्यू वर्ड्स, न्यू प्रोनंसिएशंस, न्यू राइटिंग, रोज थोड़ा सा लिखो। अभी इतनी बड़ी मुरली है तो कम से कम महावाक्य या कुछ भी चुन लो उसमें से कि ये मुझे इंग्लिश में पढ़ना है। कंपेयर करो, डिक्शनरी रखो, और आज से सबको एक नया काम दे रहे, रोज इंग्लिश के नए 10 शब्द निकालने डिक्शनरी में से, ठीक है। रोज कितने शब्द, 10 न्यू वर्ड्स, और उसके मीनिंग, ये शब्द है इसका मीनिंग क्या है, ये शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। कई सारे शब्द, क्योंकि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन बहुत सिंपल है पर नहीं है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कुछ और होते हैं, जैसा शब्द दिख रहा है वैसा नहीं होता है, तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है वो भी ढूंढना है। तो उसमें शब्द भी ढूंढना, अर्थ भी ढूंढना होता है, प्रोनाउंसिएशन भी ढूंढना होता है, और एक ही शब्द के समानार्थी 15-20 हो सकते हैं, स्लैंग होते हैं, कलोक्वियल लैंग्वेज होती है, आर्काइक इंग्लिश होती है, ओल्ड इंग्लिश, लेटेस्ट इंग्लिश होती है। उसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि, जैसे शेक्सपियर को अगर पूछा जाए व्हाट इज गूगल, तो ही विल नॉट बी एबल टू आंसर, क्योंकि वो सारा शब्द उस समय थे ही नहीं। इंग्लिश में बहुत सारे शब्दों की एडिशन से, तो नए नए शब्द, कुछ कुछ शब्द हिंदी से चले गए इंग्लिश में, जैगरनॉट, जगन्नाथ, जगन्नाथ से जैगरनॉट बना, मास्टर, बॉस, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, नए नए शब्द। तो शब्दों के साथ थोड़ा सा खेलना है, एक छोटी सी बुक बनानी है जिसमें एवरी डे वो शब्द कहां से ढूंढने, चलते फिरते कहीं ना कहीं मिल जाते, या कोई ना कोई बोलते बोलते कुछ तो बोल देता है, तो वहां से उसको पकड़ लेता है। ढूंढना है, लिखना है। हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे, 15, 8वीं, 9वीं में, तो कोई भी नया शब्द आता था ना, हम दुकान में जाते थे, उसको कहते थे डिक्शनरी खरीदनी है, तो वो डिक्शनरी देता था, बराबर वो दो शब्द का अर्थ ढूंढते थे, बाद में लेंगे वापस ऐसे 2-3 डिक्शनरी अलग। हाँ या कोई एक बुक ले लो और लक्ष्य रखो उस बुक को मुझे पूरा पढ़ना, कोई भी बुक ले लो, यज्ञ की कोई बुक ले लो, इंग्लिश बुक, ठीक है, और उसमें जो भी शब्द आते हैं उसको मार्क करो, क्योंकि ये भी एक माइंड को हम काम दे रहे हैं, नया काम। लर्निंग न्यू लैंग्वेज इज अ मेमोरी स्किल, कोई भी नई लैंग्वेज सीखना। जो इंग्लिश वाले हैं वो क्या सीखे, हिंदी, यस यू हैव टू लर्न हिंदी वर्ड्स, हिंदी प्रोनाउंसिएशंस, दिस इज अ मेमोरी स्किल, दिस इज अ माइंड ट्रेनिंग, ब्रेन स्किल्स, क्योंकि हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एक दिन इंग्लिश में बैठ के योग करो, देखो क्या होता है, फिर इंग्लिश में बाबा से बातें करना पूरा, जब योग खत्म होगा ना इतना डिस्टर्ब होगा, और फिर ऐसी प्यास होगी कि हिंदी में कब बात करूं अल्फाबेट सीखो, प्रोनाउंसिएशन सीखो, वर्ड सीखो, प्रोनाउंसिएशन सीखो, कुछ तो नया दो, नई लैंग्वेज सीखो। जो पहले भी कहा था, लोग विदेश जाते हैं पर फिर भी वहां की भाषा नहीं सीख पाते, क्यों? गुजरात वाले जाएंगे, महाराष्ट्र वाले जाएंगे, पंजाब वाले जाएंगे यूके यूएस में, तो वहां पर गुजरातियों को ढूंढ लेते हैं, पंजाबियों को ढूंढ लेते हैं, हो गया अभी सीखने का काम खत्म। डिजायर होना चाहिए कि मुझे सीखते रहना, क्योंकि इंग्लिश भाषा में खजाना लॉक्ड है, आपको खाली हिंदी का पता है। अगर जिसको गुजराती आती है उस गुजराती भाषा में कुछ ऐसा खजाना है जो किसी और भाषा में नहीं है। इसके लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस जिनको पता होती है वो लोग बहुत स्किलफुल होते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस जिनको आती है। सो इंग्लिश, और ये तो बहुत इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चलो बाकी नहीं आती है तो ठीक है, बट ये तो कंपलसरी है। किसी 2000 में एक स्लोगन निकला था, 2000 में ईयर में, इंग्लिश और एंड कंप्यूटर और डाय, ये दो चीजें तुमको पता चाहिए, इंग्लिश या कंप्यूटर या तो डाय, ये कंपलसरी है। तो लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, कितने वर्ड्स निकालेंगे, डायरी बना देंगे आज 10 वर्ड्स डेली, कहां से ढूंढेंगे, वो कहीं पर भी रोड पर कुछ भी लिखा रहता है ना कुछ तो रहता ही है, वहां से ले लो, और उसके प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, उसकी स्पेलिंग, लोग ब्रह्मा कुमारीज में है पर उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। जहां जा रहे उस स्थान का भी नाम नहीं पता, ओपीडी में लोग आते हैं, हम पूछते कहां ठहरे हो, वो ब्रह्मा कुमारी में, अरे ब्रह्मा कुमारी में कहा, ये बीके कहा, वही ऊपर या नीचे वो भी पता नहीं, ये इधर बाजू में जो है ना वो वहां पे, अरे बाजू में पांडव वन भी है, ज्ञान सरोवर में कहां रुके हो वो भी उनको पता नहीं जहां रहते हो कम से कम उस बिल्डिंग का नाम क्या है। एक और काम दे रहे, पांडव वन में जितनी इमारतें उन सब के नाम लिख के लाने, या शांतिवन में जितने बिल्डिंग्स है सबके नाम याद करो, लिखो, खुद ही जहां रुके वो स्थान ही भूल जाते हैं। इसके लिए रोड्स को याद रखना, स्थान को याद रखना, ये सब बहुत स्किल्स है, कहां से टर्न हो रहा है वो चीजें याद रखना। एक बार निकाले थे ये सारे शांतिवन की सारी जितनी बिल्डिंग्स है उन सब के नाम, और वो कहां है, आपके अगर 100 बिल्डिंग्स के नाम है तो 100 लोकेशंस तो यही होंगे, उसमें डालो अभी एक एक पॉइंट, ठीक है। तो ई, उसके बाद में एफ, एफ मिस फ्लैश कार्ड्स। बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाना है, छोटे छोटे कार्ड्स, जो चीजें आपको याद रखनी है और भूलती है कार्ड्स पे लिख के रख देना और सामने रख देना टेबल पर, ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स, या जेब में रख देना, स्टिकर जैसा या फ्लैश कार्ड्स कहते हैं उसको, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, कोई जगह का नाम बार बार ही भूलता है उसमें लिख दो, या आपको कहीं जाना है 10 जगह जाना है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वो लिख के रखो और उसको कई बार देखते रहो बीच बीच में आके, तो वो याद रहेगा। तो फ्लैश कार्ड्स, उसी तरह मुरली, मुरली को कंटिन्यूस एक साथ नहीं पढ़ते रहना है, जैसे एक पढ़ लिया थोड़ा सा, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बना और रख दिया, थोड़ी देर के बाद फिर आओ, क्या स्लोगन था सकाश, थोड़ा याद आएगा, एक याद आएगा, दो याद आएगा, ठीक है, खुद को एक्सेप्ट करना है कि कुछ याद नहीं रहता है, फिर से पढ़ लो, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, इसको भी स्वीकार करना है, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं मैं, ये भी अहंकार है, सबसे बड़ा मिराकल है जब भूख लगे तो खा लेना, क्या पुरुषार्थ करते हो, सुबह उठता हूं अमृत वेला करता हूं, और कई बार मिस भी हो जाता है, इसको भी स्वीकार करना है, इसमें भी अहंकार है। 2 बजे उठते हैं वो तो बहुत बढ़ चढ़ के सुनाते हैं, पर जिस दिन सो गए थे उसका कोई वर्णन नहीं किसी क्लास में, ये नहीं बाबा के साथ का अनुभव तब कहां गया, वो नहीं सुनाते, उस दिन बुखार भी था और कारण भी बहुत सारे, और थकान भी लग रही थी और लेट हो गया था और रात में नींद डिस्टर्ब थी, तब ये नहीं कहते कि बाबा को बहुत याद करके सोया, इतना याद किया, मुरली पढ़ा, बाबा को याद किया, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, और आराम से सी शरीर में कोई दर्द नहीं थे, और दूसरी जब आँख खोली तो 8 बजे थे, ऐसा कोई अनुभव सुनाता है क्या, नहीं सुनाते। इसको भी स्वीकार करो, ऑर्डिनरीनेस को, ऐसा है। जब तक स्वीकार्य नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको डिनाय करते रहेंगे, नकारते रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो हूं जैसा हूं उसको स्वीकार करो। जी, गेम, मेमोरी गेम्स बनाओ, जो भी पढ़ते हो उसको एक गेम के रूप में कन्वर्ट कर दो, अगर कुछ पढ़ना है अगर उसको गेम बना दिया, खेल बना दिया, 4-5 लोग मिलके उसका, तो वो याद रह जाएगा फिर, पर अगर गेम नहीं बनाया उसको तो याद नहीं रहता, उसको कहते हैं मेमोरी गेम्स। बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, वो डाउनलोड करो और जब जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करते रहो उसको, माइंड को काम देना है, फ्री नहीं छोड़ना है उसको, फ्री छोड़ते ही वो भागता कहाँ, पास्ट में, व्यर्थ में, निगेटिव में, चिंतन में, आगे के भविष्य की चिंताओं में, उसको काम देते रहना है। कौन हमको थकाता है, एक्शन हमें कभी नहीं थकाती है, नॉन एक्शन थकाती है, थकाने वाला कौन है, बहुत सेवा है, बहुत सेवा, 6 घंटा सेवा की पर उसमें इतने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, 200 लोगों से मिलना हो गया, कितनों को ज्ञान समझा दिया, फिर भी व्यक्ति इससे नहीं थकता है, थकता किससे है, वो जब 10 मिनट जो वेस्ट चले जाते हैं ना वो थकाता है, नॉन एक्शन जो कर्म है ना वो ज्यादा थकाते, एक्शन कभी नहीं थकाती। इसके लिए ब्रेन को काम देते रहना है, अच्छे अच्छे काम देना है उसको, नए नए काम देना है, वही वही वाले नहीं, नए नए। तो जी फॉर गेम्स, एच हैंड्स, कुछ भी करो उसको हाथों को इन्वॉल्व करो, जैसे आई एम विनर, आई एम टॉपर, ये याद क्यों रहा है, क्योंकि हमने उसके साथ क्या जोड़े हैं, हाथ को जोड़ा है। इसके लिए ये भी कुछ भी पढ़ो ना, ज्ञान तलवार ऐसे कर दो उसको ये तब याद रहेगा, ये कि धारणा के लिए मुख्य सार जाते ही ऐसी तलवार निकलेगी। फिर ये भी देखो कितनी भारी है, ये तलवार भारी है, ये तलवार रंग की है, कमरे में करना चुपके से या बाथरूम में करना, ये भारी है, इसका रंग क्या है और इससे मुझे करना क्या है, इसमें जौहर भरना है, शक्ति भरनी है योग की, तब वो पॉइंट याद रहेगी, ज्ञान तलवार में योग का जौहर, कुछ तो उसमें डालना है, यहां से यो कोई किरने हैंड्स का प्रयोग होना चाहिए, तो वो चीज फिक्स हो जाती है। इधर वॉइस डालो, ये आगे के इफेक्ट्स है, फिर एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, प्रतिज्ञा लेते समय ये मेरी अठंग अखंड प्रतिज्ञा, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक पहले से रेडी करके रखो, भीष्म वाली प्रतिज्ञा है ना, और थोड़ा फैन, कागज को रख दो और फैन जोर से तेज कर दो, सब कागज उड़ेंगे और फिर अखंड प्रतिज्ञा है, ये थोड़ा साउंड इफेक्ट आना चाहिए। तो ये ऐसा जब होगा ना तब वो मेमोरी उसको क्रिएट करेंगे, नहीं तो बाबा मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, ओम शांति। चलो ये एक प्रतिज्ञा है। दूसरा है वो इफेक्ट वाली प्रतिज्ञा, चित्र निकाल दिया अपना वो पावरफुल है, साउंड डाल दिया पावरफुल है। तो कहां पहुंचे हम, हैंड्स, इन हाथों का प्रयोग करो किसके लिए, याद रखने के लिए चीजों को। बाबा मुरली में कहते हैं वो कुछ चीज याद नहीं रहते तो यहां क्या बांध लेते, कुछ भी हाथ चोटी बांध लेते, वो फिर याद रहते ये चोटी क्यों बांधी थी, हाँ इसलिए बांधी थी। चाणक्य ने अपनी शिखा खोल के रख दी थी, जब तक नहीं बांधूंगा जब तक धनानंद को पदाक्रांत नहीं कर दूंगा। अगला आई इंटरवल जो अभी बताया, स्पेस स्टडी हो, कंटिन्यूस नहीं बैठते रहना है, दो घंटा आधा घंटा बैठो उठ जाओ, थोड़ा सा देखो फिर आ जाओ, फिर थोड़ा बैठो फिर देखो, कंटिन्यूस नहीं पढ़ते रहना, बीच बीच में गैप देना, माइंड को टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए। नया शब्द आ गया चटा, चटा भेटी भी चलती है, व्हाट इज चटा भेटी, तो उसको आप पहले ब्रेक कर दो, दो टुकड़े करो, चटा भेटी भेट चटा, चटाई पर भेंट हो रही है, शब्द याद रखने के लिए, क्योंकि ये शब्द याद नहीं रहता है, नया शब्द है, टग ऑफ वॉर, चटा भेटी हो रही है, तो चटाई पर भेंट हो रही है किससे, माया के साथ चिट चट हो रही है, कुछ भी, ब्रेक द केक, ब्रेक द आइस, ये जो है ना इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं ताकि वो शब्द याद रहे। हाँ तो क्या करना है, स्पेस्ड रीडिंग, थोड़ा थोड़ा गैप देके, फिर उसके बाद में जे जॉयफुल स्लीप, याद उन्हीं को ज्यादा अच्छा रहता है जिनकी नींद अच्छी होती है, जिनकी नींद बहुत कम हो रही है उनको याद नहीं रहता, अच्छी नींद चाहिए, फ्रेश माइंड फ्रेश हो जिसमें नींद होने के बाद, तो चीजें हम इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो, कई लोग होती है उनको रात भर पढ़ने की आदत होती है, दैट्स बीकेएस के लिए बेस्ट है, जल्दी सो जाओ, 2 बजे उठो और फिर अपनी पढ़ाई करो, नहीं तो कई लोग 10 बजे रात को पढ़ाई चालू करते हैं 4 बजे तक और फिर 4 बजे सोते हैं, ये रूटीन है संसार में, ऐसा ही पढ़ते हैं सब लोग, बट सबसे बेस्ट टाइम है सुबह चालू करो। उसके बाद में के से सी कर दो उसको, क्रिएट सॉन्ग या फिर राइम कुछ भी है ना, ये इसको ना गीत के रूप में गाओ, उसको जो टेक्स्ट है ना उसको क्या करना है, सॉन्ग या तो राइम। हमको गीत क्यों याद रहते हैं, उस दिन भी बताया था क्यों याद रहते हैं गीत, क्योंकि ट्यून याद रहती है, शब्द भले भूल जाए ट्यून उसकी याद रहती है, म्यूजिक ट्यून ये सब चीजें, और वो हम कई बार गुनगुनाते हैं ना इसलिए याद रहता है, ये हम गुनगुनाते नहीं है जब चाहो शरीर, इसमें हम गुनगुनाते नहीं है इसको, अगर किसी के पास स्किल्स है तो उसका राइम या फिर उसको जैसे उस दिन बताया कविता लिख लो, राइम बना दो या गीत बना दो उसको ताकि वो याद रहे, ये भी एक स्किल है। उसके बाद में एल, लर्निंग की बेस्ट मेथड जो है ना वो कौन सी है, टीचिंग, जो तुमने सीखा जो टेक्निक्स यहां सीखी ना अब जाके दूसरों को सिखाओ, ये मत बताना कि यहां से सीखा वहां से सीखा, ऐसे बताना मैं ही सीखाऊं, मैं तो पहले से पता है, ये नहीं बता रहे जस्ट कि आप जितना सिखाओगे उतना वो खुद लर्न करोगे, हाँ उससे भी सीखेंगे और वो कुछ नया एडिशन भी बता देगा, उसमें नई बातें बताएगा, तो स्टार्ट टीचिंग, टीच करना है दूसरों को, जो तुमने ईच वन टीच वन, हर एक को एक को टीच करना है, कोई ना कोई एक टेक्निक सिखा दो। हमको याद है हम जब इधर 2003 में थे गांव में जाते थे सेवा में, एक छोटे छोटे बच्चे आते थे उनको सिखा के एक रखा था मैं, लाइटू माइटू, वो अभी तक भूला नहीं है, लाइटू माइटू बोलते रहता है वो, छोटा सा बच्चा था एक, उसका नाम ही हम लोगों ने रख दिया था लाइटू माइटू, उसको कुछ पता नहीं पर वो ये उसको ये याद है लाइटू माइटू। तो छोटे बच्चे तो बहुत वो उम्र है सीखने की, जितना हम नहीं सीख पाते उतना बच्चे सीख पाते, वो कितनी नवीनता है सबकी, देखा भयंकर नवीनता है। जोर जोर से दहाड़ रहे, उनका माइंड तुरंत ग्राप्स करता है चीजों को, और जो थोड़े बड़े होते हैं वो होते हैं हमारे काम का, ये कौन करेगा, छोड़ो ये बच्चों का काम है, ये क्या है टाइम पास। तो छोटा से बच्चे होते हैं ना बहुत क्रिएटिव होते हैं उनका माइंड, इसलिए उनको बहुत बचपन से ही चालू कर देना है। तो लर्निंग की बेस्ट मेथड क्या है, टीचिंग। अगर कोई भी नहीं मन रहा है टीच करने, तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को सिखाना चालू कर दो, बच्चों को सिखाओ सबको सिखाओ, पर सिखाओ जो जो तुमने सीखा है, टीच इमीडिएटली, और जितना जल्दी सिखाएंगे ना वो और फास्ट का, वो हमको याद हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। उसके बाद में एम, मल्टी सेंसेस इन्वॉल्व करना है, मल्टी सेंसेस सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व करना, अर्थात हाथ भी लगाना है उसको, जोर से पढ़ना भी है, सुनना भी है, टच भी करना है, सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाए, स्मेल भी करना है उसका, जितनी ज्यादा सेंस इन्वॉल्व होगी उतना लर्निंग फास्ट होगा। चुपचाप बैठे कुछ पढ़ना है, जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ पढ़ रहे हैं, मेडिकल का कुछ पढ़ रहे हैं, चुपचाप अकेले, उसमें सेंसेस इन्वॉल्व नहीं हो रही है। हाँ, बहुत सारी चीजें, जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो, एक दूसरा मेडिटेशन होता है जो हम अगले इसमें लेंगे, फाइव सेंसेस मेडिटेशन, एक अलग मेडिटेशन है वो, मेमोरी में बहुत काम आता है, तो उसमें सारे सेंसेस पर काम करना है, जैसे एकांत में बैठ गए, क्या आवाजें सुन रही है सुनाई दे रही है उस पर फोकस करना, सूंघने की कोशिश, देखने की कोशिश, जैसे उस दिन भी बताया था ना, इधर ज्यादा से ज्यादा क्या दिखता है, इधर ज्यादा से ज्यादा क्या दिखता है, आई स्पैन को बढ़ाना, ये सब टेक्निक्स है, ठीक है। तो मल्टी सेंसेस को इसमें इन्वॉल्व करना है। और एक ये भी देखा गया है, एक है बैठ के पढ़ना, कुछ लोग ना चलते चलते पढ़ते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, झूले में पढ़ेंगे कहीं पर भी चलते चलते पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा एरिया ले लेंगे बस वहां गोल गोल घूमेंगे, तो उनको ज्यादा रिटेन रहता है। मुझे ये बताओ कि आप अखबार की जो न्यूज है वो याद कैसी रहती है, कितना देर पढ़ा, यहां से लाइब्रेरी गए खड़े खड़े अखबार खोला पढ़ा और आ गए, और तुरंत जो ग्रुप है उसको वो बताया कि आज के अखबार में ये आया है, याद हो गया ना, और वहां मुरली पड़ी है, मुरली पड़ी, फिर कोई आके नहीं बोलता आज की मुरली में ये था, वो नहीं याद है, क्योंकि इसको हम कैसे पढ़ते बैठ के आराम से, वो सब, और वो कैसे खड़े है और पढ़ लिया, और साथ में ये भी पता है कि मुझे ये दूसरों को बताना है, बेचारे अज्ञानी लोग ब्राह्मण, उनको पता ही नहीं संसार में क्या चल रहा है, ये मेरा मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा रहता है ना कि मैं उनको समझाऊं, इसमें व्यर्थ भी समाया है, पर मेमोरी की बात बता रहे हैं कि वो चीज हमको तुरंत ग्राप्स कर जाती है कि आज के तीन दिन से आज 2 से 5 बजे तक ये है, कैसे, हाँ ब्रेकिंग न्यूज, क्यों, क्योंकि माइंड एकदम फोकस होता है, सेंसेस इन्वॉल्व, और हमने जैसे पढ़ा तुरंत गए और सुना दिया, याद हो गया, पक्का हो गया। मुरली का ऐसा कोई नहीं करता है, कोई करता है मुरली निकलने के बाद और सुनाओ मुरली की पॉइंट्स, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, हो गई ना बस, अब अपना ज्ञान उधर ही रखना, अंदर ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाना, खतरा है सुनाने में, वो कोई नहीं करेगा, इसलिए वही रह जाता है बंद। हाँ, नेक्स्ट एन, नैरेटिव, नैरेटिव अर्थात एक स्टोरी बना देना है, जो भी पैराग्राफ याद रखना है ना उसकी एक स्टोरी, पूरा पूरे की एक स्टोरी बन जाए, तो स्टोरी याद रहती है हमको, मूवीज में स्टोरीज होती है इसलिए स्टोरीज याद रहती है, जैसे किसी एक्टर का नाम आ गया एकदम उसकी वो फिल्म और उसकी वो स्टोरी और उस स्टोरी में उस फिल्म में उसका वो नाम था वो भी याद है, और पिछले संडे के पिछले संडे की मुरली का टाइटल क्या है वो मत पूछो, बस वो कुछ भी याद नहीं बता रहे, उदाहरण भूल गया तो भूल गया, उसमें भी स्वीकार करो, कितना याद रखेंगे, ठीक है ना, भूला तो भूला, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, शांति से चल, टेंशन लेना भी नहीं जितना माइंड रिलैक्स है उतना ही मेमोरी पावर है, माइंड में स्ट्रेस है तो कुछ भी याद नहीं रहता है, इसलिए इंटरव्यू ये सब में जाओ ना तो शांति से सब कुछ करना है, एकदम आराम से, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में एन ओ, तो नैरेटिव। ओ मतलब वंस ओन लाइफ, पर्सनल बनाना है उसको, इमोशंस डालने हैं उसमें। जो पॉइंट्स आ रही है ना उसको इमोशंस में डाल, इमोशंस अपने साथ जोड़ देना, इमोशंस के साथ, मतलब मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है ये पॉइंट। कुछ भी आ रहा है, जैसे प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर, हंस बन ऊंच पद पाने। प्रवृत्ति में हम रहते हैं, हंस तो हम बने नहीं है, कब बनेंगे, ऐसे अपने आप से बात करनी है। उसको क्या करना है, पर्सनल बना देना है उस पॉइंट को। उसके बाद में वंस ओन लाइफ, उसमें देखना है। पी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस निमोनिक डिवाइसेस। अब जो निमोनिक्स है ना, निमोनिक्स क्या होते हैं, कोई एक बहुत बड़ा वाक्य होता है ना, उसका एक एक शब्द ले लेना और उसका कोई एक वर्ड बना देना, ठीक है ना, रेनबो के कलर, विक ब्योर, जो भी है, इस तरह से वर्ड बना देना उसका, एक एक लाइन, एक एक अल्फाबेट लेके। ये मेडिकल में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत मतलब बहुत। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीजेस, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीजेस, ऐसी लिस्ट है बड़ी 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 बड़ी, इतना याद रखना पड़ता है, इतना याद रखना पड़ता है, हर चीज की एक लिस्ट है। एक्स लिंक डोमिनेंट रिसीव, एक्स रिसेसिव की लिस्ट, हर चीज की लिस्ट 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 है। इस दवाई से ये साइड इफेक्ट्स है, उस दवाई के ये साइड इफेक्ट्स है, ड्रग्स कॉजिंग गायनोकोमासिया, ड्रग्स कॉजिंग ग्रैनुलोसाइटोसिस, ऐसी बड़ी बड़ी लिस्ट है। तो क्या करें, कैसे याद रखें, तो ऐसे निमोनिक बना देते हैं उसका, फिर कोई एक वर्ड बना देते हैं, उस वर्ड में सब कुछ समाया हुआ है, ठीक है, तो वो निमोनिक्स। हाँ, जैसे बिसारो उस दिन बताया ना, ट्रस्टी अर्थात बिसारो, तो बी वो एक 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 लाइन वर्ड ले लिया हमने, तो वो याद है। बी मतलब क्या, बर्डन फ्री, ट्रस्टी मतलब जो बोझ से मुक्त है, बी आई एस मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है, एस मतलब सरेंडर है, सा एस ए अटैचमेंट फ्री है, आर मतलब रिस्पॉन्सिबल है, ओ मतलब ओनरशिप फ्री है, और एच ह्यूमल हम्बल है, हो गया ना, ट्रस्टी। डन, दीज आर टेक्निक्स। तो ऐसी टेक्निक 16 हो गई ना। अभी आज एक नया काम दे रहे हैं सबको, लास्ट दिन का। हाँ, ये तो मेन है अभी आज का, जितना होता है उतना करो, नहीं हुआ तो ठीक अगले दिन करना फिर, पर लक्ष्य रखना है, करना है करके। दृढ़ता भी चाहिए, दृढ़ता भी साथ में चाहिए। अच्छा है, तो कल से वो चालू होगा मुरली रिवीजन, ठीक है, 20 लोकेशंस के साथ, और उसमें दो ब्रेन जिम भी ऐड कर दें। अपनी ब्रेन जिम खुद लाना है, नई वाली जो सबको आपको सिखानी है, जी हाँ, उधार नहीं लेना, पर पहले पहले उधार लिया तो भी चलेगा, क्योंकि करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक ये गीत है जो आप सबको गाना है हमारे साथ अभी, ठीक, एक बैकअप के लिए आप आ जाओ इधर। तो ये गीत आज आपको पूरे दिन भर, क्योंकि बच्चों का तो हो गया, कुमार कुमारी और बड़ों का नहीं हुआ है, तो सबको ये अपनी आवाज में गीत रिकॉर्ड करना है और पोस्ट करना है, ठीक है। नारा लगाना है आज, पहले लगा ले, हाँ पहले नारा लगा लेते, आ जाओ, तीन शक्तियां, त्रिमूर्ति शक्तियां, जल्दी जल्दी आ जाओ, हाँ कर देते, आ जाओ पहले, फिर ये गीत है आज पावरफुल वाला, तीन शक्तियां।
I'm topper. I'm winner.
I am winner. I am achiever.
I'm achiever.
I'm number one.
I can stretch.
I'm responsible.
I'm disciplined. I'm always confident.
I practice.
I remember everything. I remember everything. I trust my memory. My memory supports me. My memory supports me. I am spiritual memory master. I am spiritual memory master. I am spiritual memory master. Thank you, Om Shanti.
हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है आज. हमारे बीच में कौन है आज? हरीश भाई है. अचानक सरप्राइज विजिट. हम देख रहे थे, अचानक आके बैठ गए. और कितने विनम्रता है, चुपचाप. कब से बैठे हुए कि आवाज में जो जादू है वो आत्मा का जादू है. जो गीत है, संसार में असंख्य लोग हैं जो गीत गाते हैं, पर ये जो गीत है, जो इनके जो गीत होते हैं, वो यहाँ ऐसे यहाँ टच कर जाते हैं. एकदम व्यक्ति गुनगुनाने लगता है, इतना गहरा उसका प्रभाव रहता है, और जैसे कि अशरीरी अवस्था की तरफ ले जाता है. जो उस दिन गीत एक कहानी सुनाई थी ना, एक गाय एक पेंटर कहाँ घुस जाता है अपने पेंटिंग के अंदर, तो गीतकार वो जो उसका गीत और गीतकार एक हो जाए. द सिंगर एंड द सॉन्ग बिकम वंस, द डांसर एंड द डांस बिकम वन. उसका मूर्तिमंत उदाहरण है ये. पर ये जो गीत अभी हम जो बता रहे आपको, ये गीत सुनेंगे भी, और आज सबको, आपने शायद ये गीत सुना नहीं होगा, पर आपके लिए तो बहुत आसान होगा. पर इसको हम खाली हम बोलेंगे, फिर हमारे पीछे आप बोलना, फिर भाई साहब गाएंगे, और फिर उसका जो ओरिजिनल गाया हुआ है वो भी सुनेंगे. और आज सबको होमवर्क क्या है, ये गीत अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है, उसका या तो ऑडियो या वीडियो. उसमें ऐसा लिखेंगे, बीके जो भी है, राम फ्रॉम दिस प्लेस सिंगिंग परमात्मा सिमरन गीत. क्योंकि परमात्मा सिमरन ये जो क्रांति है, आज 21 दिन का अंतिम दिन है, तो इसमें आप लोग सबने बहुत सारी नई नई बातें सीखी, समझी, जानी, तो उसका ये अंतिम गीत आज. कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो,
कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो,
तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो,
तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो,
बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो,
अपना बना लो,
चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो,
चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो,
गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा,
गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा,
तुम मिलने का कोई बहाना बता दो,
तुम मिलने का कोई बहाना बता दो,
निगाहों में तुम हो,
निगाहों में तुम हो,
ख्यालों में तुम हो,
ख्यालों में तुम हो,
ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है,
जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है,
मेरे दिल को तुमने जो कुछ कर दिया है,
मेरे दिल को तुमने जो कुछ कर दिया,
ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है,
मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या,
राह पर जिंदगी की चला जा रहा था,
राह पर जिंदगी की चला जा रहा था,
मैं बुद्ध बन के आगे बढ़ा जा रहा था,
मैं बुद्ध बन के आगे बढ़ा जा रहा था,
मैं क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है,
क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है,
था पत्थर मुझे देवता कर दिया है,
था पत्थर मुझे देवता कर दिया है,
था समंदर में लेकिन,
समंदर में लेकिन,
तड़प प्यास की थी,
तड़प प्यास की थी,
तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है,
तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है,
मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है,
मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला
कि अब मर के जीना मुझे आ गया है,
कि अब मर के जीना मुझे आ गया है,
मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ,
मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ,
मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ, मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं है,
मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं है,
किसी दूसरी और अब मेरे पाओ,
किसी दूसरी और अब मेरे पाओ,
मैं बाबा को भूलूं,
बाबा को भूलूं,
ये धोखा न खाना,
ये धोखा न खाना,
मुझे छोड़ दे चाहे,
मुझे छोड़ दे
सारा जमाना, सभी स्थिर हो जाएंगे. ओरिजिनल जो गीत है वो बजेगा, फिर भाई साहब गाएंगे. सभी स्थिर, आंखें बंद, सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने समग्र समर्पण.
दिखा दो तुम आकर हमें प्रेम
کرنا سکھا دو, بن جاؤ میرے یا پھر اپنا بنا لو. چلو آج ایسا کرشمہ دکھا دو, گوارا نہیں مجھ کو تم سے کنارا. تم ملنے کا کوئی بہانہ بتا دو, نگاہوں میں تم ہو خیالوں میں تم ہو. یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. میرے دل کو جو تم نے کچھ کر دیا ہے, یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. راہ پر زندگی کی چلا جا رہا تھا میں, بت بن کے آگے بڑھا جا رہا تھا. میں کیا تھا مجھے تم نے کیا کر دیا ہے. تھا پتھر مجھے دیوتا کر دیا ہے, تھا سمندر میں لیکن تڑپ پیاس کی تھی. تھا سمندر میں لیکن تڑپ پیاس کی تھی. تیری آنکھوں میں اب ڈوبنا آ گیا ہے, مجھے کندھوں پر اب ٹھکانا ملا ہے. کہ اب مر کے جینا مجھے آ گیا ہے. میں دنیا کی ہر چیز ٹھکرا چکی ہوں, میں دنیا کی ہر چیز ٹھکرا چکی ہوں. میں من میں بابا کو پا ہی چکی ہوں. میں چلنا بھی چاہوں تو چلتے نہیں ہیں, کسی دوسری اور اب میرے پاؤں. میں بابا کو بھولوں یہ دھوکا نہ کھانا, مجھے چھوڑ دے چاہے سارا زمانہ.
ओम शांति. कुछ लाइनें आपके साथ गा देता हूँ. मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे भी अब उम्र तो मिला है, क्लास में आया हूँ तो मैं भी गा के ही भेजूंगा. और अभी उसका एक ट्रायल आपके साथ में कर लेता हूँ. तो जैसे भाई जी ने बोला था कि जब भी कोई काम करें तो हमारी सारी शक्ति या बोले सारे सेंसेस अगर उसमें जब खो जाते, तो मुझे याद आ रहा था कि बहुत सारे गाने गाने को मिले, बट जिन गानों को गाते हुए मेरी स्थिति ऐसी बनी कि मुझे बाबा की याद आ रही है और ये गाना गा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो वही गाना सुन के सब लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं भाई आपका गाना सुन के ना हमारी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ जाती है. मतलब अरे हाँ बाबा, मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था जब गा रहा था. सो वो जो स्थिति मेरी होती है वो शायद सुनने वाले की होती. इसलिए शायद भाई जी कह रहे थे कि मैं समझता हूँ कि कोई भी कला हो हमारी, अगर हम बाबा हमें हमारी स्थिति वैसी बना दे तो फिर वो देखने या सुनने वाले की, या भोजन की जो बात कहते हैं ना कि जो बनाने वाले की स्थिति वो खाने वाले की.
कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो.
नहीं उसकी जरूरत नहीं. आप कोई भी कई बार होता है जैसे कोई हमें मदद करना चाहते हैं और वो नहीं समझते, अरे मदद तो बाबा कर रहे हैं ना, आपकी नहीं चाहिए। अब जैसे ये मैं गा रहा हूँ, आप यकीन माने कि जब मैं सुन रहा था गाना तो मैं बाबा को बोल रहा था, मतलब बाबा इज्जत आप रख लेना, मैं भाई जी ने काम दे, मैं तो ऐसे ही सामने आया था, मामा जी ने बोला कि यहाँ क्लास चल रही होती सचिन भाई जी की, तो मैं खिंच के आ गया उनका नाम सुन के, मुझे नहीं पता इतनी सुंदर क्लास है। तो ऐसी धुनें बनती है जब बाबा से बुद्धि की तार जुड़ जाए, तो फिर जो मन में आता है मैं वही गाता हूँ। जब दादी जी ने शरीर छोड़ा था तो सुबह गाना आया लिखा हुआ वहाँ से ORC से कि ये गाना आपको आज ही बनाना है। सो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे गाना बनेगा, तो बोले आप ऐसे थोड़ा गुनगुना के भेज दीजिए तो हम देख लेंगे कैसा बना रहे। तुम वतन में दौड़ कर हम सब के तुम मैंने बस ऐसे पढ़ा था उसको, दौड़ कर हम सबको तुम चली गई अंबर के पार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। तो ऐसे ही गाना बाबा भेज देता है धुन, अभी इसमें धुन लिखी हुई है, आपको नहीं समझ आएगी वो। अब देखिए पहली वाली लाइन में भूल गया, कुछ नजरों से सा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो, बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो, चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो, गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो, निगाहों में तुम हो ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। बाकी का मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ओम शांति, थैंक यू।
कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो, बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो, चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो, गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो, निगाहों में तुम हो ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, मेरे दिल को जो तुमने कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, राह पर जिंदगी की चला जा रहा था मैं, बुत बन के आगे बढ़ा जा रहा था, मैं क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है, था पत्थर मुझे देवता कर दिया है, था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी, था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी, तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है, मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है,
कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ, मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ, मैं चलना भी चाहूं तो चलते नहीं है, किसी दूसरी ओर अब मेरे पांव। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना, मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना।